नमस्कार। आज हम डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की लिखी पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा के एक बहुत ही अहम हिस्से पर एक अध्याय पर बात करने वाले हैं।
जी नमस्कार। ये पुस्तक वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर है और हम खास तौर पर गुरुदेव की वापसी एवं प्राण प्रत्यावर्तन का क्रम इस अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, और ये अध्याय जो है ये उस समय पर केंद्रित है जब वंदनीय माता जी हरिद्वार में थी और गुरुदेव वो हिमालय में तप कर रहे थे। मतलब साल 1971 के आसपास की बात है। काफी चुनौतीपूर्ण दौर था वो।
बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस अध्याय में जो घटनाएं बताई गई हैं उनके गहरे अर्थ क्या हैं, उनको जरा कुरेद कर देखें।
तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में एक तो वंदनीय माताजी और गुरुदेव के बीच का जो गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है वो सामने आता है।
हाँ, और फिर 1971 के युद्ध के दौरान उनकी क्या भूमिका रही, जैसा कि पुस्तक में वर्णन है वो भी, और फिर मिशन कैसे आगे बढ़ा, ये सब बातें हैं।
दिलचस्प ये है कि कैसे यहाँ पर मतलब व्यक्तिगत साधना और जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनको एक साथ रखकर देखा गया है।
सही बात है। पुस्तक में ये बताया गया है कि 1971 में जब देश युद्ध की मुश्किलों से जूझ रहा था तब गुरुदेव हिमालय में थे और वंदनीय माताजी शांति कुंज में। दोनों ही अपने अपनी जगह कठोर साधना में लगे थे।
और कहा जाता है, जैसा पुस्तक वर्णन करती है, कि वो दोनों एक दूसरे की स्थिति को मतलब एहसास कर सकते थे बिना किसी बातचीत के भी।
हाँ, और तभी 1971 के युद्ध में वो अप्रत्याशित मोड़ आया। भारत की विजय हुई, बांग्लादेश का जन्म हुआ और लगभग 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण।
93,000, ये बहुत बड़ी संख्या है।
जी हाँ, और पुस्तक के मुताबिक कई लोगों ने इसे भारत की आध्यात्मिक शक्तियों का एक तरह से चमत्कार माना। यहाँ तक कहा गया है कि सातवें बेड़े का वापस जाना, इतनी बड़ी सेना का समर्पण, ये सब सामान्य तर्क से थोड़ा परे लगता था।
इसी से जुड़ा एक वाक्य भी है पुस्तक में, जब डॉक्टर अमल कुमार दत्ता ने वंदनीय माता जी को युद्ध जीतने की खबर दी।
हाँ,
बताया है तो उनका जवाब था, हाँ बेटा, सुन भी लिया और देख भी लिया। ये बहुत गहरा वाक्य है।
बिल्कुल। और जब उन्होंने और पूछा तो माताजी ने स्पष्ट किया कि इस लड़ाई में हमारी फौजों के साथ जो हिमालय की ऋषि सत्ताएं हैं, खासकर गुरुदेव, उन्होंने भी अपनी तपोशक्ति से भूमिका निभाई।
और ये उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष देखा, ऐसा उनका कहना था।
जी, तो ये प्रसंग दिखाता है कि कैसे मतलब घटनाओं को एक आध्यात्मिक नजरिए से देखने का दावा किया गया है इस पुस्तक में। इससे वंदनीय माताजी की जो आध्यात्मिक स्थिति है और उनकी दृष्टि, उसका पता चलता है जैसा स्रोत में बताया गया है।
हाँ, और फिर एक और पहलू सामने आता है माताजी का, उनकी करुणा, इसका भी जिक्र है।
हाँ, वो प्रसंग भी है जब गुरुदेव हिमालय प्रवास पर थे तो उनके अनुयायी, उनके शिष्य, वो सब बहुत व्याकुल थे कि गुरुदेव कब लौटेंगे।
जी, स्वाभाविक है।
तो उनकी ये जो विकलता थी उसे देखकर वंदनीय माताजी बहुत बेचैन हो गईं। पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने कहा, अपने बालकों के कष्ट मुझसे सह नहीं जाते, आखिर माँ हो ना। ये बहुत मार्मिक बात है।
और कहते हैं कि उनकी इस तीव्र प्रार्थना और पुकार को सुनकर ही गुरुदेव ने अपनी योजना बदली और वो वापस आ गए।
तो ये घटना एक तरह से गुरुदेव पर वंदनीय माताजी के प्रभाव को भी दिखाती है और अपने अनुयायियों के प्रति उनका जो गहरा वात्सल्य था उसे भी। उनके बीच का वो असाधारण संबंध, जैसा पुस्तक बताती है, उसका ये एक उदाहरण है।
फिर गुरुदेव की वापसी हुई, उसके बाद पुस्तक के अनुसार वो पहले 1972 में अफ्रीका की यात्रा पर गए।
हाँ, यात्रा का वर्णन है।
और फिर 1973 में शांति कुंज में 5 दिन के प्राण प्रत्यावर्तन सत्र आयोजित किए गए। ये शांति कुंज के पहले ऐसे साधना सत्र थे।
अच्छा, तो ये प्राण प्रत्यावर्तन सत्र ये क्या थे असल में?
हाँ, पुस्तक बताती है कि इनका उद्देश्य था साधकों को उच्च स्तरीय आध्यात्मिक तत्वों के लिए तैयार करना, मतलब उन्हें ग्रहणशील बनाना।
तो एक तरह से आध्यात्मिक तैयारी।
हाँ, ताकि वो गुरुदेव की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसे महाप्राण कहा गया, उसका अंश महसूस कर सकें, उसे अपना सकें। इसमें कुछ सरल साधनाएं थीं, गुरुदेव का मार्गदर्शन था
और माताजी की भी भूमिका थी।
बिल्कुल। वंदनीय माताजी द्वारा भोजन और औषधि कल्प के माध्यम से अपनी प्राण ऊर्जा देना भी शामिल था। इसे पुस्तक में प्राण सुधा कहा गया है।
अच्छा, प्राण सुधा।
फिर इसी दौर में, यानी 1978 के आसपास, शैल दीदी और डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का आगमन हुआ।
हाँ, और फिर ब्रह्मवर्चस्व सोल संस्थान की स्थापना भी हुई, आध्यात्मिक के वैज्ञानिक पक्ष पर शोध के लिए।
और साथ ही गुरुदेव ने वंदनीय माता जी को युग शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए देश भर में शक्ति पीठ स्थापना का अभियान भी चलाया। ये भी एक बड़ा कदम था।
जी हाँ, तो ये जो पूरा समय था इसे शांति कुंज का स्वर्णिम काल कहा गया है। हजारों साधकों ने वहाँ वंदनीय माता जी और गुरुदेव की उपस्थिति में साधना की, उनकी तपस्या की ऊर्जा का अनुभव किया
और मिशन का भी काफी विस्तार हुआ इस दौरान।
बिल्कुल, और जब गुरुदेव प्रवास पर होते थे तब वंदनीय माता जी ही मिशन और शांति कुंज का पूरा संचालन संभालती थी, ऐसा भी उल्लेख मिलता है।
तो इस अध्याय से हमने क्या समझा? एक तो वंदनीय माता जी और गुरुदेव के बीच का वो गहरा आध्यात्मिक संबंध, फिर 1971 के युद्ध को लेकर पुस्तक का जो नजरिया है।
हाँ, वंदनीय माता जी की गहन करुणा और मिशन के विकास में उन प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों की भूमिका, ये सब बातें सामने आई।
तो इन सबका अगर निचोड़ निकाले तो क्या कह सकते हैं?
देखिए, ये जो पूरा विवरण है ये हमें आध्यात्मिक साधना, मानवीय करुणा और नेतृत्व, इन तीनों के संगम की एक तस्वीर दिखाता है, जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया है। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है कि व्यक्तिगत तपस्या और सामूहिक कल्याण यानी समाज का भला, इनके बीच क्या रिश्ता हो सकता है, जैसा इस अध्याय में दर्शाया गया है।
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है।